जी नाज़रीन, शाम में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की सूरत हाल हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। यहाँ तेहरान स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे इस्लामी जमहूरिया ईरान के सीनियर और मुमताज़ तजिया निगार डॉक्टर रहमत हाजी मीने साहब, और इस्लामाबाद से आज के प्रोग्राम में शरीक किया जाएगा पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार मुजम्मिल हातमी साहब को। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे डॉक्टर रहमत हाजी मीने से, जो यहाँ हमारे साथ तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में हम आपका खैर मकदम करते हैं। शाम में दहशत गर्दों के आखिरी गढ़ इदलिब को आज़ाद कराने के हवाले से ऑपरेशन किस मरहले में है?
हकीकत यह है कि शाम की जो आज की सूरत हाल है वो बहुत ही नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। जैसा कि आपने ख़ुद भी इशारा किया है, वो है शामी फ़ौज की कार्रवाई है कि जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, और वो ऐसे इलाके में है जो दहशतगर्दों के लिए आखिरी अड्डा बना हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि ये शाम का बहरान जो 2011 से शिद्दत इख्तियार किए हुए है, अब जो है बहुत ज़्यादा वहाँ के ऊपर ग्रोहों का मुशाहिदा किया गया है कि जो दहशतगर्दों के कालिब में या दहशतगर्दी के दायरे में वहाँ के ऊपर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविश थे, और वहाँ के ऊपर हुकूमत को जो है शाम की हुकूमत को उन्होंने बहुत ही कायदे से, जिसको कहा जाए कि दबाव में डाल दिया था। लेकिन ये जिस तरीके से शामी फ़ौज ने वहाँ के ऊपर अपने को मुनज़्ज़म करके दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जिस तरीके से शुरू की है, और जिस तरीके से ख़ुद इस्लामी जमहूरी ईरान की जानिब से फ़ौजी मुशावरत फराहम की गई, ये इस बात के पेश नज़र के शाम जो है वो इस्लामी जमहूरी ईरान का एक इत्तेहादी मुल्क है, तो ये एक मसला था शाम के लिए वहाँ की अर्ज़ सालमियत का, और इस्लामी जमहूरी ईरान के लिए ये बात अहमियत रखती थी। शाम से ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में जो पाए जाते थे गहरे ताल्लुकात, उसके पेश नज़र तो वहाँ के ऊपर शामी फ़ौज ने जिस तरीके से सही रास्ते पर चलते हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ इलाकों में, शाम के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ के ऊपर ये देखा गया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शामी फ़ौज को बड़ी कामयाबी मिली। इस बात के पेश नज़र कि 600 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका था कि जहाँ के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर रखा था, और वहाँ से वो अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे थे, मगर शामी फ़ौज ने जो है वो तवक्को के बरखिलाफ़ के इतनी जल्दी इतनी बड़ी कामयाबी की उस तरीके से उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन हकीकत में हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि दहशतगर्दों की जितनी भी प्लानिंग थी या जितनी भी उनकी साजिशें थीं, उस हिमायत के बावजूद के जो बाहर से हो रही थी, उनको शिकस्त हुई है और शामी फ़ौज को कामयाबी मिली है। और ये भी बात सामने आ गई है कि वो कौन से ममालिक हैं जो खुल करके दहशतगर्दों के साथ नज़र आए हैं, उसमें तुर्की का नाम लिया जा सकता है कि जो मुख्तलिफ बहानों से वहाँ के ऊपर जंग के मैदान में कूदा है। उसने भी ये बहाना बनाया है कि वो कुर्दों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद के लिए मैदान में आया है, लेकिन जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, अगर आप उनकी माहियत पर गौर करें और उनकी सरगर्मियों पर आप तवज्जो दें, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ख़ुद तुर्की जो वहाँ के ऊपर सरगर्म अमल हुआ है और वो फ़ौजी मुदाखलत कर रहा है, उसका मकसद हकीकत में क्या है। और शाम में जिस तरीके से हुकूमत को कामयाबी मिली है, शामी आवाम के लिए ये खुशी का बायस बनी है, और जो हिकमत अमली अब इस वक्त इख्तियार की गई है, उसके पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि जो पेश कदमी वहाँ के ऊपर शामी फ़ौज को मिली है वो जारी रहेगी।
और नाज़रीन, रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और मुमताज़ तजिया निगार मुजम्मिल हातमी साहब। हातमी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हातमी साहब, शाम की हुकूमत तो अपने फरीज़े पर अमल कर रही है। हर हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करे, बदअमनी का खात्मा करे, अमन व अमान कायम करे। और इसी तरफ शाम के सदर बशार असद ने गुज़श्ता रात अपने खिताब में इशारा किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के शोर शराबे हुल्लड़ हंगामे मुखालिफतों को खातिर में लाए बग़ैर दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए और शाम के चप्पे चप्पे को आज़ाद कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और उस वक्त तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जब तक शाम का पूरा इलाका, हर इलाका, एक एक बालिश ज़मीन दहशतगर्दों के वजूद से पाक नहीं हो जाती। तो शाम की हुकूमत या शाम की फ़ौज जो कार्रवाई कर रही है, यह उसका हक भी है और फ़र्ज़ भी है। अमरीका और उसके इत्तेहादी किस कानून के तहत इसकी मुखालफत कर रहे हैं?
अशराफत साहब, ये अमरीका और उसके जो इत्तेहादी हवारी ममालिक हैं उनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। आलमी कवानीन को वो पासदारी नहीं करते हैं। अगर आलमी कवानीन की पासदारी होती तो मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन सबसे पहले हल होता है। अगर हम देखा जाए क्या कहते हैं, हलब का मसला देखा जाए, इदलिब का मसला देखा जाए, दहशतगर्दों की खुली हिमायत की गई और तुर्की ने जबहतुलनसरा के दहशतगर्दों को स्टिंगर मिज़ाइल फराम किया, जिसके नतीजे में मुसलसल 3 दिनों में शामी फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुँचा, 2 तबाह हुए। और इस तरह से बैन अल-अक़वामी सरहद को अबूर करके दहशतगर्दों की हिमायत करना ये तुर्की और नेटो ममालिक के लिए एक शर्मनाक फ़ैल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और आइंदा आने वाली नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखें, जिस तेज़ रफ्तारी और पेशकदमी, जिस सुबुक रफ्तारी से शामी अफवाज ने दहशतगर्दों के आखिरी गढ़ इदलिब और हलब की जानब पेशकदमी की, उतनी रफ्तार से जंग अज़ीम दोयम में नाज़ी फ़ौज ने मास्को की जानब यानी कि सूरत अंदाजी से पेशकदमी नहीं की थी और आलमी दुनिया के आदाद व शुमार हैरान हो गए कि ये शामी फ़ौज को आखिर कैसी क़ुव्वत फराम हो गई है। वो क़ुव्वत दरअसल अवाम की मोहब्बत है, अवाम का एतमाद है। शामी वो अपनी फ़ौज पर यकीन रखती है कि आज उन्होंने अपने मुल्क का चप्पा चप्पा आज़ाद कराने के लिए अपने अवाम और फ़ौज साथ खड़े हैं, जिसके नतीजे में 19 दिसंबर 2019 को जो सुबह इदलिब के नाम से, इदलिब डॉन के नाम से एक जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 2025 स्क्वायर किलोमीटर आज़ाद कराया गया है। और आज रूस और शामी फ़ौज की जानिब से इदलिब में दहशतगर्दों के इलाके से शहरियों के इनखला के लिए मरातुल नौमान के अंदर रजिस्ट्रेशन पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, ताकि वो वहाँ से गुजर के शामी फ़ौज के इलाके में आ सकें और ताकि शहरियों की जानी नुकसान ना हो, जिसका प्रोपेगेंडा दहशतगर्द अक्सर व बेशतर करते रहते हैं और ये एक सफ़ेद झूठ है। इसके बाद अगर हम देखा जाए, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कुर्दों ने शामी फ़ौज के साथ देने का ऐलान किया है अफरीन के इलाके में। अब वो उनको भी एहसास हो गया है कि खामोश और गैर जानबदार रहा नहीं जा सकता। अगर इस वक्त शामी फ़ौज की मदद की जाए तो इदलिब और अलबाब का एरिया भी और कुर्दों के जितने इलाके हैं वो जो दहशतगर्दों ने और तुर्की के काबिज़ फ़ौजों ने कब्ज़ा किया है शाम के अंदर, उसको आज़ाद करवाया जा सकता है। और जिस तरह इराक़ के अंदर कुर्द अवाम अपने इराकी फेडरेशन के साथ इल्हाक करके अपने हकूक़ के जायज़ हकूक़ के साथ रह रहे हैं, इस तरह शाम के अंदर भी उनको एक जायज़ हक़ मिल सकता है अगर वो अमेरिका और उसके हवारी ममालिक से दूर रहें तो। और इसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं और अनकरीब आप देखें, गुज़िश्ता 2 दिन कबल जिस तरह हलब को आज़ाद कराया गया मुकम्मल, और अभी M5 जो मोटरवे है हलब को जो दिमिक से जोड़ती है वो आज़ाद करवा दिया गया है, जबकि लताकिया और हलब को जोड़ने वाला M4 मोटरवे की जानब पेशकदमी जारी है। और कल शब जैसा कि शामी सदर बशर अल-असद ने कहा कि वो चप्पा चप्पा अपना इदलिब का समेत इदलिब का ऑपरेशन जारी रखेंगे, और आज जो ताज़ा तरीन खबर मुझे मौसूल हुई है, मॉस्को के अंदर तुर्की और रूस के फौजी माहिरीन का दूसरा सेशन भी नाकाम हो गया है और वो मुज़ाकरात जंग जारी रखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदमी ने सर। अभी आपने भी इशारा किया कि तुर्की ने फौजी मुदाखलत की है, हत्ता शाम की हुकूमत को उसने वार्निंग दी है कि इदलिब से दूर रहे, इदलिब के करीब ना आए, और अगर आई तो फिर जंग होगी। क़त्ते नज़र इससे कि तुर्की को क्या हक़ पहुँचता है कि किसी मुल्क में दाखिल हो और किसी मुल्क की फ़ौज, तुर्की का मफाद क्या है, वो इदलिब में मौजूद दहशतगर्दों को क्यों बचाना चाहता है?
हकीकत यह है कि इस हकीकत की तरफ इशारा किए जाने की ज़रूरत है कि 2011 में کہ ترکی اور شام کے جو ہیں اس وقت اچھے تعلقات تھے 2011 سے پہلے، اور بعد میں جو جس طریقے سے ترکی نے شام کی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے، یہ اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک عربوں کے خلاف یا خود شام کی حکومت کے خلاف وہ سازش جو تیار کی گئی تھی اس میں خود ترکی جو ہے وہ شامل ہوا ہے، حالانکہ پڑوس میں واقع ہونے کی حیثیت سے کہ جب دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں اس بات کی متقاضی ہیں یہ سرحدیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور ترکی کو چاہیے کہ وہ شام کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ تعاون کر کے علاقے میں قیام امن میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے، اما لیکن گزشتہ چند سالوں کے دوران جس طریقے سے دیکھا گیا ہے ہم نے یہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب سے وہاں کے اوپر داعش کا وجود آیا ہے کوبانی کے وہاں کے اوپر، ہم نے اس عرصے میں صرف یہی دیکھا ہے کہ 2018 میں ترکی نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور اس میں جو ہے اس نے امن و سلامتی کو جو بہانہ بنایا، اور اب اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادلب میں وہ یعنی ترکی خود مختلف بہانوں سے جو ہے ایک بار پھر وہاں کے اوپر جنگ کے در پہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ادلب میں اپنا فوجی اڈا قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنے فوجی وجود کو مستحکم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ترکی کی جو نظر ہے اس وقت وہ علاقے میں اپنے فوجی اثر و رسوخ کو وہ بڑھانا چاہتا ہے، اور خاص طور سے شام کی صورتحال سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے وہاں کے اوپر حالیہ جو کاروائیاں انجام پائی ہیں اور دہشت گردی کے خلاف شام کی حکومت اور شام کی فوج نے جو ہم آہنگ ہو کر کے اقدامات کیے ہیں اس سے ترکی کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔
حاتمی صاحب ایک منٹ میں ہمیں جواب چاہیے، ترکی کا معاملہ کیا ہے؟ ترکی کھلی مداخلت کر رہا ہے شام میں اور دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، دہشت گردوں کی حمایت سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ ایک منٹ کا وقت ہے جواب کے لیے۔
اردوغان جو ہیں وہ 2023 کے اندر ایک خلیفہ کا روپ دھارنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک بڑا عالمی رہنما ثابت کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیبیا میں ان کی مداخلت ہے اور قطر کے اندر انہوں نے فوجی اڈہ بنایا ہے، شام کے اندر انہوں نے مداخلت کی ہے، عراق کے اندر انہوں نے مداخلت کی ہے، اور یہ سب ایک کڑی کا نتیجہ ہے جو کہ ہمیں 2023 میں جا کر ہمیں اس کا کھل کر ترکی کے اسباب معلوم ہو جائیں گے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا احیاء ہو، اور اس نتیجے میں وہ جو کہ سوچی امن مذاکرات ہوئے روس ایران اور ترکی کے، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، ترکی نے دہشت گردوں کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم انہیں کیا کہتے ہیں سیز فائر لائن کو عبور کرنے نہیں دیں گے، لیکن ترکی نے اپنے دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کیا جس کی وجہ سے سیز فائر لائن ختم ہو گیا، اور آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے شام کے اندر اس سب کا قصوروار ترکی ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر حاتمی نے کے بھی شکر گزار ہیں۔